समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और FM 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, राज्यों की परिक्रमा करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस एपिसोड ऑफ परिक्रमा, where we bring you an amalgamation of news reports. And since the name of the show is Parikrama, to zahir si baat hai, jab tak desh ki parikrama nahi hogi, to kahan se mukammal hoga hamara show. So yes, we'll go on a parikrama of a country to different corners and see what interesting stories our correspondents have, because not all the stories make it to the headlines, but there are some very nice cultural stories or stories of value that need to be shared with you. So yes, all of that. And of course, the last segment is always very special because we remember some of those personalities who have left their indelible mark on the sands of time. And of course, us section mein aaj ek jaane maane yesteryears ke singer ki baat karenge, jinki awaaz mein aapko kai gaane aaj tak aap gungunate hain. And yes, all of that, but first let's start with the headlines, Mudita. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention at Bhubaneswar, emphasizes crucial role of Indian diaspora in transforming country into a developed nation by 2047.
Pradhan Mantri ne Pravasi Bharatiyon ke liye vishesh paryatak train Pravasi Bharatiya Express ko hari chandi dikhai.
Center asks states and union territories to organize 100-day intensified campaign on TB elimination.
Prayagraj mein somvar se shuru hone wale Mahakumbh mele ki taiyari अंतिम चरण में।
एंड इन टेनिस, इंडियाज युकी भांबरी एंड हिज फ्रेंच पार्टनर अल्बानो ओलिवेती एंटर मेंस डबल्स सेमीफाइनल्स ऑफ एएसबी क्लासिक एट ओकलैंड इन न्यूजीलैंड। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take at the important developments that are taking place at the national or global level. And Mudita, since we all know that the Pravasi Bharatiya Divas is going on and it will go on till tomorrow. Gee. So of course our topic for today in Dateline India is Pravasi Bharatiya Divas. Well, the nation has entered the Amrit Kal for the next 25 years, and our Pravasi Bharatiyas have a significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you. That were the words of Prime Minister Narendra Modi.
और 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस भारतीय प्रवासियों के भारत के प्रति योगदान का सम्मान करता है। ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और श्रोताओं, हम बताएं आपको कि ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है। तो सायरा, जब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय की, तो जो सबसे बड़ा नाम हमारे जहन में आता है वो है महात्मा गांधी का। तो दक्षिण अफ्रीका से जब उन्होंने वापसी की, उसके बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा उन्होंने दी। आज ही के दिन 9 जनवरी 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इस दिन को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 में शुरू हुई।
यस, एंड वी विल हैव मोर डिटेल्स अबाउट दिस डे एंड द सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू दिस डे इन आवर आजादी का सफर लेटर इन द एपिसोड। एंड वेल, द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश, as you said Mudita, in the year 2003 under the government of then Prime Minister late Shri Atal Bihari Vajpayee, as a platform to recognize and engage with the overseas Indian community. The Prime Minister acknowledged the contributions of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in establishing the Pravasi Bharatiya Divas, which has now evolved into a vital platform to strengthen the bonds between India and its diaspora.
Your presence in India at such a wonderful time is adding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason, we have gathered here just a few days after the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. His vision was instrumental to the program. It has become an institution to strengthen the bond between India and its diaspora. Together, we celebrate India, Indianness, our culture, our progress, and connect to our roots.
प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है और ये भारतीय प्रवासियों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। 2015 के बाद से ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है जिसमें बीच के वर्षों में थीम आधारित सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के बीच नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है।
Off yesterday and it will last till tomorrow. This is the 18th PBD convention and the theme for this year's Pravasi Bharatiya Divas is Diaspora's Contribution to a Viksit Bharat ya Hindi mein agar kahein to Viksit Bharat ki sankalpna mein Pravasi Bharatiyon ka yogdan. This theme has been highlighted to be the prime role of the Indian diaspora in shaping a developed India which is according to the government's vision of a Viksit Bharat.
Aur shrutao ye ayojan na केवल एनआरआई की उपलब्धियों का सम्मान करता है बल्कि इस पर भी संवाद करने का प्रयास करता है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये भारतीय प्रवासियों को फिर से अपने देश के साथ जुड़ने और अपनी मातृभूमि के साथ गहरे संबंधों को बनाए रखते हुए जिन देशों में वे रह रहे हैं उनके प्रति अमूल्य योगदान को स्वीकार करने का एक तरीका है और ये अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई के साथ ही भारतीय मूल के व्यक्तियों की उपलब्धियों को भी मान्यता देता है और भारत की विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल मुदिता हु कंप्राइज द इंडियन डायस्पोरा। इनफैक्ट आप किसी भी मुल्क में चले जाइए तो आई थिंक सड़क पे हर दूसरा या तीसरा इंसान इंडियन ही दिखता है आपको।
बिल्कुल।
एंड यस, मेनी इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स होल्ड सिग्निफिकेंट पोजीशंस एज वेल इन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड देयर एडवोकेसी हैज पॉजिटिवली शेप्ड ग्लोबल डिस्कोर्स इन फेवर of India. They serve as a bridge between India and the world and are also, of course, important. It is a testament to India's global influence, a source of national pride and a catalyst for positive change.
बिल्कुल सही कहा सायरा आपने और इसके साथ ही ये जो भारतीय प्रवासी हैं ये हमारे सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब वो बाहर जब जाते हैं तो अपनी विरासत परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करते हैं और इसके माध्यम से ही चाहे त्योहार हो खान पान हो भाषा हो संगीत हो उन्होंने बाहर के देशों में भी रहते हुए अपनी मातृभूमि की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा है और देखा जाए तो ये द्विपक्षीय साझेदारी के निर्माण के लिए एक रणनीतिक उपकरण है। भारतीय प्रवासी भारत को वैश्विक पर्यटन और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
एंड यू वेरी राइटली सेड मुदिता बिकॉज अक्सर जब हम लोग अपने ही मुल्क में होते हैं तो बहुत सी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज कीजिए आपका घर जो है लाल किले के पास है तो शायद ही आप सालों में कभी एक बार जाते होंगे लाल किले, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने टूरिस्ट आते हैं उस लाल किले को देखने। सिमिलरली वेन वी आर इन आर कंट्री देन प्रोबेबली वी डोंट रियलाइज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज स्मॉल ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स, बट वेन वी गो अब्रॉड तब हमें याद आती है कि हम दिवाली फिर से मनाए उसी तरह उसी जोश से या हम ईद उसी तरह मनाए। बिकॉज इफ यू आई मीन आई जस्ट शेयरिंग अ पर्सनल एनेक्डोट दैट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट अब्रॉड देन मैंने जिंदगी में अपने मुल्क में कभी डांडिया नहीं खेला था, लेकिन मैंने पहली बार जो है गरबा और डांडिया जो है अब्रॉड यू कैन से आई टुक पार्ट इन इट। तो ये होता है कि आपको अपने मुल्क की ज्यादा याद आती है, आप
जड़ों से ज्यादा जुड़ जाते हैं कहना चाहिए
या जुड़ना चाहते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू यू नो रिमेम्बर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। एंड वेल नॉट only about the cultural significance, Indian diaspora is also a powerful force for the economic empowerment of our country. Their contributions through remittances, trade linkages and investments are critical drivers of inclusive growth and national development. It also plays a pivotal role in global trade, investment and technological exchange. The Indian diaspora, with its extensive networks and global influence, plays a crucial role in expanding India's export footprint.
और प्रवासी भारतीय दिवस के अगर हम प्राथमिक लक्ष्यों की बात करें तो वो है भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को स्मरण करना, विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ पैदा करना और दुनिया भर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण के लिए काम करना, साथ ही प्रवासी भारतीयों को सरकार और उनकी मातृभूमि के लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना। और इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपने संदेश में कहा कि भारत न केवल सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक है बल्कि भारतीय प्रवासी मातृभूमि से सबसे अधिक निकट से जुड़े हुए भी हैं।
The very people centric changes we promote in India also benefit the diaspora. This could be enhancing the ease of doing business, promoting ease of living or facilitating connectivity and travel. The application of digital technologies to ensure diaspora welfare is also apparent.
And as India continues to strengthen its position on the world stage, the Pravasi Bharatiya Divas will undoubtedly play a crucial role in fostering stronger ties with its global community and channeling their expertise towards national development.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो सायरा, सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं हम?
वेल, वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुडे विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुदिता। वेल, विद द ऑनसेट ऑफ द न्यू ईयर 2025 and the dawn of a generation beta, the nation welcomed its first baby of this new generation on New Year's Day, which was precisely on 1st January in Aizawl in Mizoram. The baby arrived at 3 minutes past midnight on 1st January at Synod Hospital in Aizawl, and we have more details from our correspondent.
In what could be termed as a historic milestone heralding a tiding of joy for the new generation, Mizoram gave to the nation the first newborn in 2025. The first generation beta baby was born at Synod Hospital located at Durtlang in Aizawl on 1st January. Frankie Remuat Dingazadeng, the first baby boy of the nation in 2025, joined his family, which includes his mother Ramzir Moy, father Zedir Remuat Sanga, and his older sister. Speaking to Akashvani Aizawl, Sister Lal Chuanomi of Synod Hospital said that Frankie weighed 3.12 kg at birth and was in good health with no complications.
The baby boy Frankie Remuat Dingazadeng is in good health without any complications. His weight at the time of birth was 3.12 kgs. It is a good moment for Mizoram, as the first generation beta baby in India was born in Mizoram. I sincerely wish good health and prosperous future for the baby boy.
With the world entering the new generational era with the dawn of 2025, it is hoped that time will take us for a better and peace world amidst unprecedented technological integration and societal evolution in the coming days. For Parik Rama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
और सायरा, अब हम चलते हैं एक नई दिशा की ओर। हम ये जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है और वो आज के बड़ी वर्कफोर्स है कहना चाहिए आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि और भी विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। और छत्रपति संभाजी नगर में नगर निगम के प्रियदर्शनी स्कूल में इस नए साल से पहली से दसवीं कक्षा के बच्चे अब जर्मन भाषा सीख रहे हैं। इस बारे में स्कूल के प्रधान अध्यापक संजीव सोनार ने और अधिक जानकारी दी।
महाराष्ट्र शासन की तरफ से 3 महीने पहले एक लिंक आई थी, अगर कोई टीचर्स को जर्मन भाषा लर्न करना है, सीखना है, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे स्कूल में से 2-3 टीचरों ने वो लिंक भरी और 3 महीने से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत आनंद मिल रहा था कि ये जो जर्मन भाषा है तो ये इंग्लिश से कुछ अलग नहीं है। ABCD जो आप इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें से उच्चार अलग है, तो उस हिसाब से उन्होंने हमारे सामने रखे कि भाई अपने बच्चों को भी जर्मन भाषा आना चाहिए क्योंकि आगे चल के महाराष्ट्र जर्मनी इन देशों में जो उद्योग चल रहे हैं उनके उद्योग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने उद्योग जा रहे और अपने लोगों को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध होना, इसलिए जर्मन भाषा आना जरूरी है। इसलिए हमारे स्टूडेंट को हमने बेसिक जर्मन भाषा सिखाने का निश्चय किया और जर्मन भाषा सिखाना शुरू कर दिया।
प्रियदर्शिनी स्कूल का ये कदम निश्चित ही सराहनीय है। जर्मन भाषा का ये प्रारंभिक ज्ञान इन बच्चों में इस भाषा के प्रति लगाव बढ़ाने में निश्चित ही सहायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
And well, the National Science Center in Delhi is celebrating its 33rd anniversary today. To commemorate the event, the Director of the Council of Scientific and Industrial Research, National Physical Laboratory, CSIR-NPL, Professor Venu Gopal Achant, inaugurated a new gallery called Digital World in the Research Center. We have more details from our correspondent.
The Digital World Gallery showcases wonders of technology and innovation. Digital advances including the creation of COVID vaccinations, the use of AI and machine learning, digital imaging of the human body and the number of current challenges with potential future uses are all included in the display. Talking exclusively to Akashwani News, the director of CSIR-NPL, Professor Venugopal Achanta, shared that the research center has put in a lot of effort to bring in information for all age groups.
Really commendable that they chose this occasion to launch this digital information. They have put in lots of effort to bring in information for all age groups. They made it really interactive for different genres like digital imaging to human body, biology, even the vaccines, like so how the vaccines were developed recently during the COVID time.
Students from five NGOs attended the exhibition and experienced the digital wonders. Talking to Akashwani News, a student of Dipalaya NGO, Aman, has expressed happiness after visiting the digital gallery.
यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली. पुराने जमाने के कैसे फोन चलाए जाते थे, पानी की कैसे बचत की जाए, डिजिटल बोर्ड के बारे में पता चला.
Another student, Raksha Sonkar, shared her experience after visiting the exhibition.
आज मैंने बहुत कुछ नया देखा, कैसे कैसे पूर्वजों में हमारी कैसा होता था, पानी की जो थी गंदगी और साफ सफाई. डिजिटल वर्ल्ड में भी मैं आई और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ नया सीखने को मिला.
The exhibition highlights digital innovations in an interactive manner for the students to understand scientific wonders in a simple way. For Parikrama, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
And to Mudita, let me just share with our listeners that we usually take our kids to malls ya wahan pe thode se play zones hote hain, but it's very important ki kabhi aap agar Delhi mein hain to ye science center zarur jayein, because it's a very interesting, and not only kids, even adults would enjoy the simple experiments jo wahan pe hote hain. It's quite an interesting place, and with this exhibition going on, I'm sure definitely it would be very very good for the kids. Moving on in our journey of Parikrama, we again head towards the northeastern state of Tripura. Well, in a move that would accelerate the growth engine of Tripura, the state government is contemplating to set up its second rubber park in South Tripura district. The state already has its first rubber park at Bodhjang Nagar near Agartala, and there are three major companies who have been operating their industries based on rubber wood. Besides, three more big companies have expressed their intent to set up units at Bodhjang Nagar.
The diminutive northeastern state of Tripura is known for its picturesque natural beauty, varieties of pineapples, betel nuts, and bamboo. The state has also carved a niche in natural rubber. The state is second largest producer of natural rubber after Kerala, and therefore it is a driving force in the state's economy. Now, with the state government planning to set up its second rubber park in Santir Bazar in South Tripura, the state may soon witness a boom in the rubber production and rise in employment. Emphasizing on the use of advanced technology to increase the production of rubber, Tripura Industries and Commerce Secretary Kiran Gitte said that his department, rubber board and banks would provide all kinds of support to procure new technologies to boost the rubber plantation. In the rubber growers meet held at Agartala, Executive Director of the rubber board M. Vasathageshan said Assam and Tripura can take a lead in the rubber sector with expansion of plantations leading to a push in rubber-based industrialization. He said, rubber industries can avail raw materials from Tripura. He said the state government has also been extending support with the setting up of rubber park, rubber-based special economic zone and Chief Minister rubber mission programs. Tavasathageshan further highlighted the new schemes like rain guarding training, which would provide 30 to 40 more days for tapping by the growers to yield production increase. He said the focus is also on quality improvement and more expansion of group processing centers for the growers.
From 269 crores in 23-24, it has been enhanced to 348 crores for the entire rubber sector, rubber board. And for 25-26, it has been enhanced to 360 crores. So budget has been increased more than 20%.
Around 250 rubber growers, officials from the concerned departments and PSUs participated in the event. Officials said natural rubber plantation has evolved as a game changer in the economy of Tripura. It has transformed the lives of thousands of people who currently earn more than 2 lakh rupees per month as against 1,000 to 2,000 per month when they were shifting cultivators decades back. Kunal Shinde for Parikrama from Akashvani News, Agartala.
And in business news today, well, benchmark domestic equity indices ended with losses of over 0.6%, dragged by realty and oil and gas sectors. The 30 share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 528 points to close at 77,620, while the Nifty 50 at the National Stock Exchange lost 162 points to settle at 23,526.
And in the game of the hulchal, the UK Bhamri and France's Albano ओलिवेटी की जोड़ी ने आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एएसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. वहीं हॉकी इंडिया लीग में आज रात 8:15 वेदांता कलिंग लांसर्स का मुकाबला टीम गुनासिका से होगा. कल राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने टीम गुनासिका को 6-5 से हरा दिया.
And now it's time for Azadi ka Safar.
On the 9th of January 1915, Mahatma Gandhi returned to India after his successful satyagraha in South Africa. Upon his return, he was honored by the people of Bombay at a magnificent reception in the palatial house of a Bombay businessman, Jahangir Petit. Despite leading an extra-constitutional movement in South Africa and defying laws, Gandhi received a warm welcome, even from the British Indian government, as the cause for which he had fought appeared as much humanitarian as political.
Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes?
No, I haven't refused. I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress.
Mr. Gandhi,
now that you're back in India, what are you going to do?
I don't know.
The British Indian government joined hands with the people of India in showering honours on Gandhi, and he was accorded with Kesari Hind Gold Medal in the King's Birthday Honours List of 1915.
Gandhi took his time to plunge into Indian independence movement. Under the guidance of his Indian political mentor, Gopal Krishna Gokhale, Gandhi underwent a year of probation to understand the Indian situation and did not express himself upon public questions for a year. During the year of probation, Gandhi confined himself to the reform of the individual and the society. His restraint was partly due to self-imposed silence and partly to the fact that he was still studying conditions in India. After the year was over, Gandhi devoted himself to the cause of Indian independence completely.
Since 2003, 9th of January has been commemorated as Pravasi Bharatiya Divas by the Government of India to mark the contribution of the overseas Indian community towards the development of India.
आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस. श्रोताओं, बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज के साथ सीधे आत्मा तक उतरने की खूबी रखते हैं. उस्ताद राशिद खान उनमें से ही एक थे. आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और पिछले साल इसी कार्यक्रम परिक्रमा के दौरान हमें स्टूडियो में ही ये दुखद खबर मिली थी जो हमने आपके साथ साझा की थी. शास्त्रीय संगीत की दुनिया का सरताज कहा जाता था उन्हें. उस्ताद राशिद खान संगीत के रामपुर से इस्मान घराने से ताल्लुक रखते थे, जिसके संस्थापक उनके परदादा उस्ताद इनायत हुसैन खान थे. संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपने नाना उस्ताद निसार हुसैन खान से हासिल की और पहला कार्यक्रम केवल 11 साल की उम्र में दिया था. कहते हैं कि एक गायक को अपनी गायकी से बंदिशें खोलते रहना चाहिए और उस्ताद ने आजीवन ये किया. वे खुद भी कहते थे कि अगर पॉपुलर गीतों के जरिए युवाओं के भीतर शास्त्रीय गायन के प्रति रुचि पैदा होती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. और ये दिखाई देता था उनके कॉन्सर्ट्स में जब उनके लोकप्रिय गीत आओगे जब तुम उसाजना के बहाने युवा पीढ़ी घंटों ख्याल गायकी सुनती रहती थी. शास्त्रीय गायन के साथ ही ठुमरी, गजल, भजन और फिल्मी गीत सब उन्होंने दिल से गाया और जो भी गाया सब उनके रंग में रंगा नजर आया।
आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले।
2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2022 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और सायरा, एक बात जो उनसे मिलने के बाद हमें समझ में आई कि इतने सिद्ध कलाकार जिनकी गायकी का लोहा बड़े बड़े उस्ताद मानते हो, पंडित भीमसेन जोशी ने जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का भविष्य कहा हो, इसके बावजूद कोई इंसान इतना सरल, इतना ग्राउंडेड हो सकता, ये उनसे सीखने की बात थी। उस एक मुलाकात में जिसमें मेरा पूरा परिवार साथ में था और थोड़ी देर बाद वो मेरे पति को सा लगाना खा रहे थे, मतलब कहा वो इतने बड़े उस्ताद और कहा हम सुरविहीन लोग, लेकिन वो पूरे मन से सिखा रहे थे। तो सलाम उस्ताद, आप जहां भी होंगे अपने सुरों की रोशनी लुटा रहे होंगे।
और एक और हस्ती को याद कर रहे हैं मुदिता, जो यकीनन अपने सुरों की उन्होंने जो है किरणें हर तरफ तो बिखेरी, एंड आई एम श्योर इवन टुडे इट्स स्टिल रेडिएटिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट महेंद्र कपूर। इन अ करियर दैट स्पैंड डेकेड्स, हिज रेपर्टोआर इंक्लूडेड पॉपुलर सॉन्ग सच एज चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों फ्रॉम द फिल्म गुमराह, और वेदर इट वॉज नीले गगन के तले फ्रॉम हमराज। हिज नेम हाउएवर बिकेम मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, और जिसके लिए उन्हें बहुत जो है एक्लेड्स भी मिले, मेरे देश की धरती इन मनोज कुमार फिल्म उपकार, एंड ही कंसिडर्ड मोहम्मद रफी एज हिज गुरु। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1972। ही लेंट हिज वॉइस टू एक्टर मनोज कुमार इन मोस्ट ऑफ हिज फिल्म एंड हैड अ लेंथी एसोसिएशन विद डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,
जीवन का राग सुनाते हैं।
है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की।
और जो गीत था मेरे देश की धरती सायरा, इसके लिए 1968 में जो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए दिया गया था वो महेंद्र कपूर को दिया गया था। और 90 के दशक में धारावाहिक महाभारत के लिए उनके गाए टाइटल सॉन्ग को कौन भूल सकता है। 1964, 68 और 75 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 27 सितंबर 2008 को उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी आवाज, उनके नगमे हमारे दिलों में बसे हुए हैं।
है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
And today is the birthday of Farhan Akhtar, a well actor, filmmaker, singer, and I think a very, very versatile personality. And he's, of course, we know, born to very talented parents, Javed Akhtar and Hani Irani. He established his own company, Excel Entertainment, along with Ritesh Sidhwani. In fact, jo, you know, unki jo film aayi thi, sabse pehle Dil Chahta Hai, I think that was quite a watershed moment in Indian cinema. We all remember.
Kisi nirdeshak ko pehli film mein sarvashreshth film ka rashtriya puraskar मिलना, ये भी बड़ी बात है।
एब्सोल्युटली, एंड दिस ऑल्दो बहुत से उनके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वो हमेशा जो है यू नो एलीट क्लास को दिखाते हैं अपनी पिक्चर्स में, मिडिल क्लास होता नहीं, एंड ही वेरी ऑनेस्टली सेड दैट बिकॉज आई हैव नेवर लिव्ड दैट लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन, सो आई डोंट नो, बट आई वांट टू पोर्ट्रे ऑनेस्टली व्हाट आई नो बेस्ट।
ये बड़ा ईमानदार है उनका कहना चाहिए।
तो उनकी एक फिल्म आई थी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जो उनकी ही सिस्टर जोया ने डायरेक्ट की थी। तो क्यों ना उनकी आवाज में जावेद अख्तर की बड़ी खूबसूरत पोएम है, लेट्स लिसन टू दैट।
बिल्कुल।
जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो अनुमति दीजिए मुदिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
जब दर्द का बादल छाया।